दोस्तों, SBS हिंदी पर आज हम बात करते हैं बिजनेस इंश्योरेंस, यानी कि हमारे व्यापार की रक्षा के लिए जो जरूरी बीमा होता है उसके बारे में। तो चलिए बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं बिजनेस इंश्योरेंस की तज्ञ अर्चना राय से। अर्चना जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका।
अर्चना जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बहुत ही आसानी से समझाने ना चाहें कि बिजनेस इंश्योरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगी?
अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया, इंश्योरेंस मतलब ही इंश्योरेंस लोग लेते ही इसलिए हैं ताकि कभी भी कोई भी तरीके का रिस्क हमारी लाइफ में आए उसको पहले से हम प्रोटेक्ट कर लें। तो बिजनेस इंश्योरेंस में बेसिकली आप अपनी सारी पूंजी लगा देते हो, बहुत सारा पैसा खर्च करके आप अपना एक बिजनेस चालू करते हो, और उसमें अगर कुछ भी अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, जैसे आपने बोला अनजानी परिस्थितियां आ गई हैं जिसके कारण आपका आग लग गई, चोरी हो गई, इस तरीके की चीजें आ जाए और आपकी सारा लॉसेस में चला जाए, आपका जो पैसा आपने स्पेंड किया उसको, आप एक कंफर्टेबल रिस्क फ्री लाइफ के लिए आप बिजनेस इंश्योरेंस लेते हैं।
अर्चना जी, तो क्या बिजनेस इंश्योरेंस एक ही प्रकार के होते हैं या ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत ही विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कवर होती हैं?
बिजनेस इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी एक इंश्योरेंस बिजनेस एक ही प्रकार के होते हैं, बट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एग्जांपल, जैसे रिटेल सेगमेंट, किस तरीके के बिजनेसेस होते हैं? हमारे रिटेल सेगमेंट होते हैं, होलसेल सेगमेंट होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है हमारी, या फिर प्रोफेशनल सेगमेंट होते हैं। तो ये अलग अलग बिजनेस की जो कैटेगरीज होती हैं उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग होती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है या फिर एक पेट्रोल पंप का बिजनेस चल रहा है जो रिटेल सेगमेंट में आते हैं, और उनको अगर मेरे को इंश्योरेंस गाइड करना है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपके यहाँ पर जो आपने पैसे खर्च करके अपना वहां पर फर्नीचर लगाया है, आपने अपने कंटेंट रखे हैं, एसी रखा है, कूल रूम रखा है, इन सबको कवर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी डैमेज सेक्शन। आपने अपनी बिल्डिंग खरीदी जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, वहां पर जो सामान रखा है, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, एसी, इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स महंगे महंगे खरीद के रखे हैं, और एक सडन इंसिडेंट होता है, आग लग जाती है और सबका सब सारा सामान जल जाता है, आपको उस सिचुएशन को कवर करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस जो आपको लेना होता है। फ्लड आ जाता है आपका, सब डूब जाता है, सामान नुकसान हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस लेना होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बिजनेस इंटरप्शन सेक्शन। अगर सपोज करो आपका आग लग गया, एक तो सामान का नुकसान हुआ और आपके 2-3 महीने तक आग उस सिचुएशन से रिकवर करने के लिए आपको 2-3 महीने तक लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, आप हर महीने कमा रहे थे $15,000-$20,000 में, स्मॉल सेल बिजनेस की बात कर रहे हो, वो भी आपकी बंद हो गई, तो बिजनेस इंटरप्ट हुआ, तो उस सिचुएशन में जो लॉस ऑफ इनकम है आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। चोरी हो जाती है वो तो हमारे हाथ में नहीं होती, कब कैसे कौन आकर दो दरवाजा तोड़ के चोरी करके इंसान चला जाएगा, तो वो दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड। तो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कॉन्टेंट और स्टॉक का कवर बहुत जरूरी होता है कि हम अपना कॉन्टेंट और स्टॉक का इंश्योरेंस लें। अब चोरी में भी दो किस्म की चोरी होती है, एक आपका कॉन्टेंट और स्टॉक की चोरी हुई, कॉन्टेंट यानी आपके सामान जो बिजनेस रन करने के लिए चल रहा है, और स्टॉक जो सामान आप बेच रहे हैं, तो एक तो उसकी चोरी हुई और दूसरा आपके पैसे की चोरी हुई, जो आपने आपके हार्ड कोर कैश करेंसी रखी हुई है, आपके ड्रॉवर में रखी हुई है, या आप रास्ते में जा रहे हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए और रास्ते में कोई छीन के आपसे भाग जाता है, या फिर आपने वो पैसा आप घर ले जाकर रख रहे हैं अपने और बोलेंगे कल मैं ऑफिस ले जाता हूं, तब तक मैं अपने घर में सेफ्टी से रखता हूं, तो रेसिडेंस में आपका पड़ा हुआ है, कोई चोरी करके ले गया, तो आप तो इस उम्मीद में रहते हैं कि कल जाकर मैं ऑफिस में यूज कर लूंगा या बैंक पर जमा कर दूंगा, उस दौरान अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो वो एक कवर आपको थेफ्ट में लेना पड़ता है। कांच आए दिन टूटता रहता है, कोई आकर पत्थर मार गया, कोई बच्चा खेल रहा है, कभी कुछ गिर गया तो कांच आपका टूट गया, तो ये इसके लिए ग्लास इंश्योरेंस आपको लेना पड़ता है। और एक सबसे कॉमन कवर जो आता है मशीनरी, जो हमारे हाथ में नहीं होती, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं आपके, महंगे आइटम होते हैं, एसी होता है, कूल रूम होता है, फ्रीजर्स होते हैं, डिशवॉशर होता है, ये जो आपके, अगर सपोज करो वैसे आपकी प्रॉपर्टी डैमेज में अगर आग लग जाती है या बारिश हो जाती है तेज या फिर फ्लड आ जाता है, तो उसमें तो ये कवर्ड होते हैं, बट ऐसा कुछ होता भी नहीं है और चलते चलते एकदम से ये रुक जाते हैं, तो इन इसका कवर लेने के लिए आपको मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सेपरेट ब्रेकडाउन कवर लेना पड़ता है। अब कोई अगर ऐसा चाहता है कि चलो मैं तो जाकर ऑनलाइन कोटेशन लेना चाहता है, तो इतना डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाएगा कि मैंने तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डैमेज अपना कंटेंट इंश्योरेंस ले लिया है। तो वही ये जो मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कवर वो लेगा, ये सेपरेट कवर लेना इसलिए जरूरी है कि वो स्पेसिफिकली इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंटल और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। इसके सिवाय आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज है जो मुझे सबसे पहले चालू करनी चाहिए, मैं आखिरी बता रही हूँ, पब्लिक और प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। थर्ड पार्टी को आपके बिजनेस एक्टिविटी से किसी तरीके का भी नुकसान होता है या उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का नुकसान होता है, वो कवर होता है इसमें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप रेस्टोरेंट में आपके कुछ खाना खाकर उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है थर्ड पार्टी को, या पेट्रोल पंप का पेट्रोल यूज करके उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, या ब्यूटी सलून में आपने किसी का ट्रीटमेंट किया है और फेशियल किया, उसके चेहरे पे कुछ चोट लग कुछ एलर्जी हो जाती है इस तरीके का, या फिर आप क्लीनिंग सर्विस करने के लिए गए हैं आप किसी के दुकान में और जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसकी टाइल्स खराब हो जाती हैं। तो एनी क्लेम्स विच अराइजेस बिकॉज ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी एंड इट इज क्लेम्ड बाय थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी क्लेम कहते हैं, पब्लिक लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये ब्रॉड फॉर्म लायबिलिटी होती है, प्रोडक्ट कंज्यूम करके अगर आपको उसको आगे वाले को नुकसान होता है, किसी तरीके का भी डैमेजेस और इंजरीज होती है, तो प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है। और अगर सपोज आपकी प्रिमाइस में वो आता है और एक चेयर पे बैठा है और चेयर टूटी हुई है और वो गिर जाता है, या पोछा ठीक से लगा नहीं हुआ है, ठीक से स्वाइप नहीं किया गया उधर पे, साबुन रह गया, वो फिसल के गिर जा रहा है, तो उसको किसी तरीके का भी नुकसान की प्रिमाइस में भी होता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी से, तो वो पब्लिक और प्रोडक्ट लायबिलिटी में कवर्ड होता है। ये सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जो आपको लेना पड़ता है। जितना पैसा आपने, जितनी मेहनत करके आपने कमाया है, एक अकेला पब्लिक लायबिलिटी का क्लेम, ये बहुत ही बेसिक पॉलिसी विच इज क्वाइट वेरी मच रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी।
अर्षा जी, आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि जब कोई व्यक्ति व्यापार में जाता है तो कितने सारे जरूरतें होती हैं जिसको सुरक्षित करना होता है, और कितने सारे प्रकार के बीमा इस बिजनेस इंश्योरेंस के तहत उपलब्ध हैं। तो आप बताइए कि जब किसी व्यक्ति को बिजनेस इंश्योरेंस खरीदना हो तो उन्हें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
अब इसमें ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन पॉलिसी देखी थी और मुझे $500 की पॉलिसी मिल गई, आपके पास आ रहा हूँ तो मुझे आप बोलते हो $1,000 की पॉलिसी है। तो बींग अ एडवाइजर हम एग्जैक्टली उसकी नीड, हमारे क्लाइंट की नीड असेस कर सकते हैं और उसके लिए जो सबसे सही पॉलिसी वो गाइड कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस वाला एक आता है जो एक NBN के साथ कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपके अंडरग्राउंड करके हाई वोल्टेज में काम करता है या फिर अंडरग्राउंड लेइंग करता है, तो उसके लिए पॉलिसी अलग बनती है, और एक सिंपल केबलिंग का काम करता है उसके लिए पॉलिसी अलग बनती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग करेक्ट ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें। कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम पास करते वक्त बहुत ही जरूरी है कि हम क्या ऑक्यूपेशन ले रहे हैं, हम लोग उसके सम इंश्योर्ड कितने ले रहे हैं। हम लोग सोचते हैं चलिए टर्नओवर कम बता देते हैं, हमको सस्ती करनी है पॉलिसी तो हम थोड़ा इंश्योर्ड अमाउंट कम बता देते हैं, या फिर कुछ भी सेक्शंस हम लोग जब ऑनलाइन खुद लेने जाते हैं तो हमको ये बात का अंदाजा ही नहीं होता कि इससे इसका इफेक्ट क्या होगा अगर हम ये चीजें कम कर देते हैं या सस्ती पॉलिसी के चक्कर में जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द करेक्ट ऑक्यूपेशन, करेक्ट इंश्योर्ड वैल्यू, करेक्ट टर्नओवर and the insurance cover which is required आपकी specific occupation के लिए। एक advisor आता है, insurance advisor या फिर एक tax consultant या एक engineer या एक doctor, वो business insurance policy के सिवाय उसको professional indemnity जहाँ उसकी advisory role भी cover होगी वो भी लेनी होती है उसको। तो अलग अलग occupation में अलग अलग requirements होती हैं हम लोग advise करते हैं अपने clients को। तो खासतौर से ये मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई क्लाइंट आए तो एटलीस्ट एक बार एडवाइस जरूर ले ले किसी एडवाइजर से टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी प्रामाणिकता से, जितनी साफ इंफॉर्मेशन देकर हम पॉलिसी खरीदेंगे उतना हमें ही फायदा होगा। अर्चना जी, SBS हिंदी से बात करके बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में श्रोता मित्रों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।